नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप सुन रहे हैं रेडियो आईबीसी। आज का न्यूज ब्रेकर में चर्चा उस मीटिंग की, जिस पर सारे देश बल्कि दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। वो बैठक जिसे जम्मू कश्मीर के इतिहास में दर्ज किया जा सकता है, वो बैठक जिसे लेकर जम्मू कश्मीर में तमाम नेताओं से लेकर देश भर के सियासी दलों में हलचल है। तो ध्यान से सुने आज का न्यूज मेकर और इसे अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून गुरुवार को कश्मीर के नेताओं के साथ एक सर्वदलीय मीटिंग करने वाले हैं। इसमें जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर बातचीत हो सकती है। कौन से दल इसमें हिस्सा लेंगे, कौन कौन से नेता इसमें हिस्सा लेने वाले हैं और किस दल ने इस पर असहमति जताई, इसको लेकर पिछले 3 दिनों से लगातार कयासों और उधेड़बुन का सिलसिला चला। लेकिन अब कश्मीर के तमाम दलों के नेता और सबसे महत्वपूर्ण पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन PAGD ने प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर सहमति जताई है। 5 अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करते हुए उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा था और उसके बाद वहां राजनीतिक अस्थिरता के हालात बने। ज्यादातर कश्मीरी नेताओं को नजरबंद किया गया। अब देश की सरकार चाहती है कि केंद्र की तरफ से एक कदम आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो और इसके लिए सभी दलों से बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना बेहद जरूरी है। और ऐसे में PAGD यानी पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के नेताओं से मुलाकात करना एक बेहद अच्छा कदम सिद्ध हो सकता है। लेकिन इस मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, इसको लेकर लगातार कयासों और चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। हालांकि इस बारे में स्पष्ट तौर पर अब तक कुछ भी सामने नहीं आया। 5 अगस्त 2019 के बाद राज्य में जो कुछ अब तक हुआ है उसने प्रदेश में राजनीतिक तौर पर काफी उथल पुथल मचाए रखी। आरोपों और प्रत्यारोपों का सिलसिला लगातार चला, जिसमें न केवल देश बल्कि पड़ोसी पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर के कई नेताओं की कुछ टिप्पणियां सामने आई हैं। लेकिन इस मसले पर भारत का पक्ष बड़ी मजबूती के साथ और साफ साफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बताया गया। धारा 370 के खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट JKRA को लेकर एक गतिरोध की स्थिति है, ये सच बात है। इसके अलावा काफी सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर बातचीत की शुरुआत हो सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर को एक बार फिर राज्य का दर्जा देने की बात की जा सकती है। इस बारे में नेताओं की अपनी अपनी राय रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला समेत कुछ क्षेत्रीय नेताओं ने स्पष्ट तौर पर कहा कि बैठक में किस बात को लेकर चर्चा होगी, इस पर उनको कोई जानकारी नहीं दी गई और इस बारे में वो कोई कयास लगाना नहीं चाहते। एक अटकल ये भी है कि क्या केंद्र की सरकार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की संभावना पर बात करेगी, क्या ये चुनाव इसी साल मुमकिन है। लेकिन इस समय जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और इसे पूरा करने के लिए सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी और सहयोग बेहद जरूरी होगा। क्षेत्रीय दलों के सहयोग के बिना इस पूरी प्रक्रिया में दिक्कत आएगी और बिना परिसीमन की प्रक्रिया पूरी किए जम्मू कश्मीर में चुनाव हो पाना मुमकिन नहीं होगा। पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की श्रीनगर में हुई बैठक में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मोहम्मद तारिगामी, गुपकार अलायंस के नेता मुजफ्फर शाह शामिल हुए। इन नेताओं ने ये तय कर लिया है कि केंद्र सरकार के साथ होने वाली बैठक में हिस्सा लेना चाहिए। ऐसा करने से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच में बातचीत का दरवाजा खुले होने का एक सकारात्मक मैसेज जाएगा। अब तक जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक मोदी सरकार ने 8 राजनीतिक दलों के कुल 14 नेताओं को इस मीटिंग के लिए बुलाया है। धारा 370 हटाए जाने के बाद ये पहली बार होगा जब केंद्र सरकार कश्मीरी नेताओं से सीधे बात करेगी। केंद्र की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा देश के गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रमुख रविंद्र रैना, PDP चीफ महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी, नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीमो फारूक अब्दुल्ला, CPM नेता MY तारिगामी, कांग्रेस के जम्मू कश्मीर यूनिट के चीफ GA मीर शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद और उमर अब्दुल्ला को भी इस मीटिंग में बुलाया गया है। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में सर्वदलीय बैठक में गुपकार डिक्लेरेशन के नेताओं को आमंत्रित क्यों किया। ये गुपकार डिक्लेरेशन है क्या और इसका जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में कितना इन्वॉल्वमेंट है। तकरीबन 22 महीने पहले आर्टिकल 370 को रद्द करने से एक दिन पहले 4 अगस्त 2019 को श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों की एक मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग फारूक अब्दुल्ला के गुपकार रोड स्थित बंगले पर हुई, जहां पर ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया था कि वे जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, ऑटोनॉमी और स्पेशल स्टेटस की सुरक्षा के लिए लगातार संघर्ष करेंगे और इसे गुपकार डिक्लेरेशन का नाम मिला। इस डिक्लेरेशन में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और जम्मू कश्मीर के सभी प्रमुख दल मौजूद रहे। 15 अक्टूबर 2020 को फारूक अब्दुल्ला के घर पर इन नेताओं ने एक बार फिर मुलाकात की और पार्टियों की इस भागीदारी को पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन नाम दिया। ये ग्रुप कश्मीर को विशेष दर्जा देने की मांग करता रहा है और इसे आगे भी जारी रखने की बात कहता है। तो ये साफ है कि केंद्र सरकार के साथ होने वाली इस मुलाकात में इस गुपकार ग्रुप का क्या रवैया और किस तरह का रुख रहेगा, इस पर ही जम्मू कश्मीर में आगे का भविष्य तय हो सकता है। हालांकि इसी साल चुनाव कराने में सबसे बड़ी बाधा है अधूरा परिसीमन। फिलहाल इस बात को लेकर कयास हैं कि परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर में विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों को नए आकार देने की जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक परिसीमन का कार्य पूरा नहीं होगा, तब तक जम्मू कश्मीर में चुनाव मुमकिन नहीं है। संसद में देश के गृह मंत्री ने भी इस बात को स्पष्ट किया था कि सबसे पहले परिसीमन का काम पूरा होना है और इसके लिए मार्च 2022 तक का वक्त है। उस वक्त देश को ये भी बताया गया कि क्षेत्रीय दल इस काम में सहयोग नहीं दे रहे, जिस वजह से परिसीमन के काम में अड़चने हैं। यानी परिसीमन के बाद चुनाव होंगे और परिसीमन के लिए क्षेत्रीय दलों का सहयोग आवश्यक है। तो क्या कल होने वाली मुलाकात का प्रमुख एजेंडा गुपकार अलायंस के नेताओं को परिसीमन के कार्य में सहयोग देने की अपील करने के तौर पर सामने आएगा? इसके पहले जम्मू कश्मीर में 1995 में परिसीमन हुआ था। राजनीतिक तौर पर जम्मू कश्मीर के हालात देखें तो 2018 में भाजपा के समर्थन वापस लेने के बाद पीडीपी की महबूबा मुफ्ती सरकार गिर गई थी। 19 जून 2018 से जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगा। उस समय धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में तब राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता था। नवंबर 2018 में विधानसभा भंग हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक विधानसभा भंग होने के 6 महीने के भीतर चुनाव कराने थे, लेकिन ये काम हो नहीं सका। फिर 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने धारा 370 खत्म कर दी। राज्य दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बट गया। तब से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। कई एक्सपर्ट का मानना है कि केंद्र सरकार की इस पहल के पीछे इस वक्त सारी दुनिया में देश की मजबूत स्थिति और जम्मू कश्मीर की आम जनता में मैसेज देने के सही वक्त के तौर पर देखा जा रहा है। इस समय जम्मू कश्मीर में स्थानीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हालात केंद्र सरकार के लिए काफी अच्छे हैं। कश्मीर के जो नेता केंद्र के साथ सहमत नहीं थे, वो इस वक्त या तो नजरबंद हैं या जेल में हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने अपने दल की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम बखूबी किया। चीन के साथ भी लद्दाख में फिलहाल सीज फायर की स्थिति है। वहीं सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि घुसपैठ के लिहाज से अगर देखें तो इस वक्त शांत वातावरण है। सोपोर में रविवार को पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया गया। इसके अलावा पिछले 8 महीने में कोई भी विदेशी आतंकी यहाँ कोई घटना को अंजाम नहीं दे पाया है। ये तय है कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल अविश्वास का वातावरण है। खास तौर पर राजनीतिक तौर पर अस्थिर वातावरण ने आम लोगों के बीच में भी एक असुरक्षा की भावना को पनपा रखा है। जम्मू कश्मीर के नेताओं को अब तक केंद्र सरकार पर पूरा भरोसा नहीं हो पाया है और ऐसे में उम्मीद है देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ कश्मीरी नेताओं की इस बैठक के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव, लोकतंत्र की बहाली और परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में एक सकारात्मक माहौल बनेगा और आने वाले वक्त में देश का अभिन्न हिस्सा रहा जम्मू कश्मीर एक मजबूत लोकतांत्रिक सरकार को चुनने की तरफ आगे बढ़ सकता है। देखना होगा 24 जून को होने वाली इस मुलाकात से क्या वाकई कश्मीर का भविष्य लिखे जाने की शुरुआत होगी। आज का न्यूज मेकर आपको कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।